हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। 401। अगला दिन सुनैना ने टाइम से अपनी दवाइयां ली, क्योंकि अब आदित्य खुद ही उसे अपने हाथ से दवाइयां दे रहा है। लेकिन फिर भी अगली सुबह जब वो सोकर उठी तो वो बिल्कुल भी पहले की तरह नहीं हुई। वो अभी भी कल की तरह ही बर्ताव कर रही है, क्योंकि उसे सब कुछ याद नहीं आया। उसकी याददाश्त वापस ना आने की वजह से आदित्य थोड़ा सा मायूस जरूर हुआ, लेकिन ये बात उसने अपने चेहरे पर नज़र नहीं आने दी। आज सुबह से ही आदित्य का फ़ोन ना जाने कितनी बार रिंग हो चुका है, लेकिन आदित्य सुनैना के साथ बातचीत करके उसे पिछली बातें याद दिलाने में बिजी है, जो कि सुनैना को कुछ धुंधली धुंधली सी याद भी आ रही है, और इसीलिए आदित्य बार बार अपने फ़ोन पर आते हुए फ़ोन कॉल्स को इग्नोर कर रहा है। उसके साथ बैठी हुई सुनैना भी इतनी देर से ये सब कुछ नोटिस कर रही है। 10 से 12 बार उसके सामने ही आदित्य ने कॉल डिस्कनेक्ट और इग्नोर की, तो आखिर सुनैना ने कहा, रिसीव कर लो, क्या पता कोई बहुत इम्पॉर्टेंट काम हो। सुनैना ने ये बात बहुत ही फॉर्मल होते हुए कही, तो आदित्य ने कहा, हाँ एक बिजनेस मीटिंग है, लेकिन मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है इस तरह से लोगों से मिलना जुलना, और इससे पहले ना सारी मीटिंग तुम ही अटेंड करती थी, लेकिन अब आज तो अटेंड कर नहीं पाओगी, तो बस इसीलिए फ़ोन नहीं उठा रहा मैं, और मना कर दूंगा अभी मैं, लेकिन तुम कोशिश करो पहले और बताओ तुम्हें क्या याद आया। आदित्य की ये बात सुनकर सुनैना का मुंह बहुत ही हैरानी से खुल गया, और उसकी खूबसूरत आंखों में भी हैरानी साफ नज़र आ रही है। उसने आदित्य की तरफ इसी तरह से देखते हुए पूछा, क्या मैं और बिजनेस मीटिंग करती थी? आर यू फॉर सीरियस? मुझे तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो फिर मैं कैसे सब कुछ हैंडल? और मैं तो, सुनैना अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही आदित्य ने उसका एक हाथ अपने दोनों हाथों में पकड़ लिया और फिर उसकी तरफ देखते हुए बोला, बिल्कुल ऐसे ही, इस तरह से मैं तुम्हारे साथ रहता था ना हमेशा, और तुम कहती थी, बस आदि तुम ऐसे हो मेरे साथ रहो तो हमारी सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी, और वैसा हुआ भी था। लेकिन फिर इतना बोलते हुए आदित्य को विराज की हरकतें और अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स, बाकी सारी चीज़ें याद आने लगी, जो कि अब फिर से उसे काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम बनकर दिख रही हैं। उसे इस तरह चुप होकर कुछ सोचते हुए देख सुनैना ने कहा, अच्छा ठीक है, वैसे मुझे कुछ याद तो नहीं आ रहा, लेकिन पता नहीं क्यों जब तुम बोलते हो तो सब सच लगता है और यकीन करने का दिल करता है, पता नहीं क्यों। इतना सब बोलते हुए सुनैना ने बहुत ही कन्फ्यूजन से इधर उधर देखते हुए कहा, क्योंकि वो आदित्य से आई कॉन्टैक्ट बहुत ही ज़्यादा अवॉइड करती है, क्योंकि उसे आदित्य की आंखों में अपने लिए बहुत कुछ नज़र आता है, और वो सब कुछ नज़र आते ही सुनैना खुद भी काफ़ी अजीब सा फील करने लगती है आदित्य के लिए, क्योंकि वो भी आदित्य की जज्बातों से कहीं ना कहीं जुड़वा फील करती है, लेकिन उसे याद नहीं है वो सब कुछ, तो ये सब उसे काफ़ी परेशान करता है। तभी फिर से आदित्य का मोबाइल फ़ोन रिंग हुआ, तो आदित्य ने मोबाइल फ़ोन उठाकर कॉल पर बात की, और फिर कुछ ही देर में कॉल डिस्कनेक्ट करते हुए मोबाइल की स्क्रीन पर देखा, तो एकदम से उसकी नज़र डेट पर पड़ी, और उसने एकदम से कहा, शिट, आज की डेट? उसके मुंह से इतना निकला, जिसे सुनकर सुनैना बोली, हाँ क्या हुआ आज की डेट को, कुछ इम्पॉर्टेंट था क्या आज? अरे हाँ, इम्पॉर्टेंट नहीं, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, मतलब मेरे लिए तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया था मैंने आज का तुम्हारे लिए, पता है तुम्हें, स्पेशलिस्ट सर्जन है जो कि अमेरिका से सिर्फ महीने के 5 दिनों के लिए यहाँ पर आते हैं, बड़ी मुश्किल से उनका अपॉइंटमेंट मिला है, सोचो मेरे जैसे लोग को भी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि वो सभी को एक तरह से डील करते हैं और किसी का भी कंसिडरेशन या सजेशन नहीं मानते हैं, और वो बहुत ही अच्छे टॉप के डॉक्टर हैं। सुनैना फटाफट से रेडी हो जाओ, हमें वहाँ के लिए निकलना है। कौन से डॉक्टर और क्या ट्रीटमेंट करेंगे वो मुझे कैसे याद दिलाएंगे, मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा, सुनैना ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, क्योंकि वो अब तक काफ़ी विराज हो गई है अपनी याददाश्त को लेकर। लेकिन तभी आदित्य ने उसके कंधे पर हल्के से ठोकते हुए कहा, नहीं कमान, चलो फटाफट से चेंज करके आओ, मैं यहीं तुम्हारा वेट करता हूँ, 2 मिनट में आ जाना और हमें बस तुरंत निकलना है। आदित्य ने सुनैना को इतना समझाया तो उसकी बात सुनकर सुनैना भी आखिर ना चाहते हुए भी अपना सिर हिलाकर वहां से उठ अपने कमरे की तरफ ही बढ़ गई चेंज करने के लिए। चकाचक दूसरी तरफ रागिनी और अक्षत दोनों साथ में हॉस्पिटल आए हैं। अक्षत ने बहुत ही अलग तरह से रागिनी को इस बात के लिए मना लिया, और वो पहले तो काफी बहाने बना रही थी ये बोलकर कि उसे चेकअप से, इंजेक्शन से, इन सब चीजों से डर लगता है और वो ब्लड भी नहीं निकलवा सकती इंजेक्शन से, इसीलिए वो कहीं भी नहीं जाएगी। लेकिन फिर अक्षत ने कहा कि ये सब वो उसके लिए नहीं बल्कि अपने होने वाले बच्चे की हालत के लिए कर रहा है, और ये चेकअप बहुत ही जरूरी है, तो आखिर ना चाहते हुए भी रागिनी को अक्षत के साथ वहां पर हॉस्पिटल आना पड़ा। अक्षत ने एकदम नॉर्मल कपड़े पहनकर कैप लगाया हुआ है और चेहरे पर मास्क भी, जिससे कि कोई उसे पहचान ना पाए, सिर्फ उसकी आंखें कुछ बाल और उसकी पूरी बॉडी नजर आ रही है। देखते हैं, अक्षत ने अपने हिसाब से अपना एक्टर वाला अपीयरेंस एकदम चेंज कर दिया है और इस वक्त तो एकदम नॉर्मल इंसान की तरह रागिनी के साथ वहां पर आया है। और उसने जानबूझकर रागिनी को भी मास्क पहनाकर रखा हुआ है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि मीडिया वाले या रिपोर्टर इस तरह से साथ देख लें और फिर इस बात को लेकर भी कोई उल्टी सीधी गलत न्यूज मीडिया में छाप दें। रागिनी वहां पर आई और फिर वो दोनों एक साथ ही गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर के केबिन के अंदर पहुंचे और वहां पर साइड में डॉक्टर के कंपाउंडर के कपड़े पहने हुए अक्षत का असिस्टेंट अजय भी मौजूद है और उसने भी चेहरे पर मास्क लगाए हुआ है, तो रागिनी उसे पहचान नहीं पाई और फिलहाल वो और किसी बात को लेकर परेशान है, तो उसने इस बात पर इतना ध्यान भी नहीं दिया। उस डॉक्टर ने उन दोनों को ग्रीट किया और फिर अक्षत के बोलने पर रागिनी को चेकअप के लिए अंदर लेकर जाने लगे। क्रमशः